श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अच्छे स्वास्थ्य के मूल स्तंभों में एक है व्यायाम। हम हमेशा बातें करते हैं कि हमें जिंदगी में व्यायाम करना है, मानव शरीर के लिए ये नितांत आवश्यक है, जीवन में ऊर्जावान रहने के लिए और उस ऊर्जा से विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए। लेकिन व्यायाम से संबंधित बहुत सारी समस्याएं और भ्रांतियां और संदेह आज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, या व्यायाम के तरीके को समझने में या उसे करने में। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विवेक कुमार दुबे आज हमारे बीच हैं। आप शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद, नमस्कार। आकाशवाणी बिलासपुर के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने भूमिका बांधी है, मैं सीधे विषय पर ही आना चाहूंगी कि हमारे शरीर को व्यायाम की आवश्यकता क्यों है।
बहुत अच्छा प्रश्न है सुप्रिया जी। निश्चित तौर पर मैं ये अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हम सभी वास्तव में मनुष्य, जिसको हम प्राणी कहते हैं, बाहर की दुनिया से ऊर्जा लेते हैं, और ये जो ऊर्जा है इसको आयुर्वेद या संस्कृत की भाषा में प्राण कहते हैं। तो वास्तव में हम जो क्रियाएं करते हैं, अपनी जो भी गतिविधियां करते हैं, हमको ऊर्जा उसके लिए जरूरत होती है, और मूल रूप से हम आहार के माध्यम से, विहार के माध्यम से, विचार के माध्यम से और आचार के माध्यम से ऊर्जा लेते हैं। तो इसमें जो विहार है, जिसमें कि हम तरह तरह की गतिविधियां करते हैं, नींद लेना या व्यायाम करना या हमारे जो मल मूत्र इत्यादि वेग हैं उनका सही समय पर निस्तारण करना, ये सारी चीज़ें हमें विहार के रूप में हम करके और इस तरीके से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो व्यायाम हमारे विहार रूपी क्रिया के माध्यम से हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है।
वैज्ञानिक रूप से हम इसे कैसे समझे कि व्यायाम करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे मुख्य रूप से व्यायाम है क्या। तो कहते हैं, आयुर्वेद संस्कृत में लिखी गई एक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें कहते हैं कि शरीर चेष्टा चा इष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धनी, अर्थात शरीर की वो सारी चेष्टाएं जो इष्ट हों, प्रिय हों और परिणाम में हमको कुछ लाभ देने वाली हों और हमारे शरीर में स्थिरता ले आएं। स्थिरता मतलब जो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी कंटिन्यूएशन में हेल्दी रहे, एजिंग जल्दी ना आए, इसको हम स्थिरता कहते हैं। एंटी एजिंग की तरीके से स्थिरता ले आएं और हमारे शरीर के कार्य करने के बल में वृद्धि करें, ऐसी क्रिया को हम व्यायाम कहते हैं
जी।
तो वास्तव में व्यायाम हमारे जो है शरीर में स्थिरता ले आके हमारे बल की वृद्धि करता है।
इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से इसे समझें?
बिल्कुल, व्यायाम करने से सबसे पहले जो हमको लाभ मिलता है वो है लाघवम, अर्थात हमारे शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है
जी।
कर्म सामर्थ्य अर्थात हमें कोई भी काम करने की जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। और जो भूख प्यास है वो समय पर उत्पन्न होती है। हमारी जो मांसपेशियां हैं या सौष्ठव है, हमारे जो शरीर के अंग हैं, वो बिल्कुल घन और विभक्त स्थिति में, मतलब हर मसल्स का अपना एक कॉम्पैक्ट मास होता है, एक अपनी जो है एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं
जी।
और आयुर्वेद कहता है दुख सहिष्णुता, अर्थात कोई भी बीमारी आने की क्षमता में, सहने में यहाँ वृद्धि हो जाती है और कोई भी बीमारी जल्दी नहीं उत्पन्न होती है। सामान्य भाषा में कहें कि आयुर्वेद को कहा गया है कि आरोग्य कराणाम सिस्टम, व्यायाम जो है आरोग्य करने में सबसे उत्तम है। तो अगर हम निरंतर व्यायाम करते हैं तो हमें जल्दी बीमारियां नहीं होती हैं, और अगर कुछ उत्पन्न भी होती हैं तो वो बहुत जल्दी जो है शांत हो जाती
है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और हम एक नवजात शिशु को देखते हैं डॉक्टर साहब, जो एक सेकंड भी शांत नहीं रहता है
जी।
और उसके अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक उसका खेलना रहता है। गांव की भाषा में से बोलते हैं, बच्चा खेल रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है
जी।
और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सारी जो गतिविधियां हैं वो बड़ी क्षीण होती चली जाती हैं, और फिर हमें व्यायाम के रूप में एक घंटे की गतिविधि अपने को देनी पड़ती है कि हम शरीर को एक्टिव कर सकें। तो इसकी सही विधि क्या है, किस उम्र में किस ढंग से व्यायाम करना चाहिए?
जी, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है, व्यायाम करने के लिए हमें क्या क्या उचित स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो व्यायाम हर आयु में किया जा सकता है, लेकिन व्यायाम के लिए एक बहुत मूल बात है कि हमें अपनी जो कार्य करने की क्षमता है उससे अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उससे आधी शक्ति का व्यायाम करना हमारे लिए उपयुक्त रहता है। और इसका आकलन हम कैसे करें, इसके लिए कहा गया है कि जब हम कोई काम करते हैं तो अगर हमारे श्वास की तीव्र वृद्धि हो जाए और हमारा जो हृदय प्रदेश है, हार्ट रीजन है, यहाँ पे कुछ दबाव सा महसूस होने लगे और हमारे ललाट और नाक पे पसीना आने लगे, तो ये समझना चाहिए कि हमने अपने शरीर से अर्ध शक्ति का व्यायाम कर लिया है और हमें हल्कापन महसूस होने लगे। तो ऐसी स्थिति तक हमको व्यायाम करना चाहिए। कुछ कुछ स्थितियां और हैं जिसमें हमको ध्यान करना चाहिए अगर मौसम का भी हमारे व्यायाम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। ठंडक के मौसम में शीत ऋतु और वसंत ऋतु में हम अपनी अर्धशक्ति तक व्यायाम करें, लेकिन अन्य ऋतुओं में हम उससे कमतर गर्मी के मौसम में हमारा शरीर जो है उतना व्यायाम करने की क्षमता वाला नहीं रहता, तो हमें अपने आवश्यकता से हमारी अर्धशक्ति से थोड़ा कम व्यायाम करना चाहिए। बालकों और वृद्धजनों को थोड़ा संयमित रूप से कम व्यायाम करना चाहिए, वो व्यायाम के लिए किसी बहुत ज़्यादा जो है अति व्यायाम से उनको बचना चाहिए, वो अर्धशक्ति से भी मंद स्थिति का व्यायाम करें। गर्भवती महिलाएं जो है चंक्रमण रूपी व्यायाम करें, अर्थात पैदल तीव्र गति से चलना उनके लिए सबसे उचित है खाली पेट में, यही नियम जो है बालकों और वृद्धों के लिए भी लागू होता है। ऐसी स्थिति में हम व्यायाम का सेवन कर रहे हैं तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी रोग की स्थिति में नहीं हो।
कोविड के बाद डॉक्टर साहब ऐसा हुआ है कि कोविड तो ठीक हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लोग जिम जाते हैं, जिन्होंने अपनी पुरानी एक्टिविटी शुरू की है जो पहले करते रहते थे, ऐसी स्थिति में लोगों की मृत्यु भी हुई है।
जी।
तो इस संदर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है।
बहुत ही समसामयिक प्रश्न है और निश्चित तौर पर बहुत दुखद है कि आज ये देखने में आ रहा है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो सक्रिय रूप से एक्सरसाइज करते हैं या जिम वगैरह में जा रहे हैं और उनको जिम करने के दौरान ऐसी दुर्घटना हो रही है। निश्चित तौर पर मैं अपने श्रोताओं को यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि व्यायाम करने से पहले हमें, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं या एक प्राइमरी प्रिपरेशन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप कोई भी काम करने जाते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं उसको आप चेक करते हैं। वैसे ही मेरा आपसे अभी सभी से वह है कि आप इस व्यायाम करने से पहले अपने आप को चेक करें और कि आप इस व्यायाम करने लायक योग्य हैं या नहीं। हमारा भारतीय विज्ञान आयुर्वेद कहता है कि हमें कुछ स्थितियों में बिल्कुल व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी इस तरीके से श्वास इत्यादि रोग से पीड़ित हैं, या हम किसी डाइजेशन वगैरह के रोग से सफ़र कर रहे हैं, या हमारे नींद इत्यादि का सही ढंग से हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, या हम शारीरिक के साथ साथ किसी मानसिक चिंतन, क्रोध, शोक या इस भय की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में हमको व्यायाम नहीं करना चाहिए। खासकर जो बलपूर्वक व्यायाम है उससे बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में सिर्फ हमको चंक्रमण रूपी टहलने वाला व्यायाम करना चाहिए। तो मूल रूप से ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आयुर्वेद एक कहता है कि किसी भी चीज़ को छोड़ के सडन उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक सलाह है कि पादांशिक क्रम 1/4 1/4 हमको अपनी हैबिट्स में एक्टिविटीज़ को ले आना चाहिए और इस तरीके से वो हमारे साथ जुड़ती जाती हैं और हम उसके साथ बहुत आसानी से यूज टू हो जाते हैं। तो कभी भी आप जब लंबे समय के गैप के बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें और अपनी स्वस्थिति का आकलन कर लें कि आप इन सारी परेशानियों से अगर ग्रसित हैं तो आप हैवी एक्सरसाइज के बजाय चंक्रमण रूपी व्यायाम से अपने आप को स्टार्ट करें और जब आपकी स्वास्थ्य की स्थिति सम्यक हो जाए तब आप आगे की अर्धशक्ति व्यायाम तक की स्थिति तक जाएं।
बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि जो श्रोता आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इन सब बातों के संदर्भ में जागरूक हो गए होंगे कि हमें किस समय किस प्रकार अपने व्यायाम को शुरू करना है और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा 1/4 1/4 1/4 1/4, यदि हम 20 बार सूर्य नमस्कार करते थे तो हम 2 या 3 बार से शुरू करें, हफ्ते हफ्ते बाद हम उसकी संख्या बढ़ा के हम 20 तक भी ले जा सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि विग्रस एक्सरसाइज एकदम से शुरू नहीं करना है। और डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति के लिए क्या सुझाव हो सकता है कि जिंदगी में किस समय कितनी देर के लिए उसे व्यायाम करना है और किस तरह का व्यायाम करना है?
निश्चित तौर पर हमको सभी लोगों को व्यायाम नियमित रूप से अपने दिनचर्या का हिस्सा बना के करना चाहिए। यहाँ मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने अपने वार्ता के प्रारंभ में कहा कि हम सभी प्राणी हैं और हम बाहर की दुनिया से ऊर्जा लेते हैं, तो मूल रूप से जो ये ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं वो नेचर से हम ऐसे लेते हैं कि जो हमारी ऊर्जा है उसके 3 प्रमुख स्तंभ बन जाते हैं। पहला जो स्तंभ होता है कि जिससे कि हम बाहर की दुनिया के साथ जुड़ते हैं, जैसे सूर्य है, इसके साथ हम जब जुड़ते हैं तो हमारे पाचन या परिवर्तन की ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ऐसे ही जब हम नींद लेते हैं तो हम चंद्र के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ हमारे शरीर में रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो सूर्य और चंद्र दोनों एक दूसरे के साथ सुबह से शाम होना या रात से सुबह होना, ये जो दो हमारे जोड़ हैं जिनको हम संधि काल कहते हैं, यहाँ जब हम अपना ध्यान करते हैं तब हम अपने बाहर की दुनिया के वायु के साथ जुड़ते हैं। वायु का काम होता है सूर्य की एनर्जी से चंद्र की एनर्जी में ले जाना और चंद्र की एनर्जी से सूर्य की एनर्जी में ले जाना। तो इस समय ही हमारे यहाँ योग, व्यायाम, प्राणायाम, सांस्कृतिक तरह तरह के जो रियाज होते थे वो सब इसी काल में विशेष रूप से किए जाते थे। तो व्यायाम जो है अगर हम अपने संधि काल में करते हैं तो हम वायु रूपी क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं और वो वायु जो है हमारे शरीर और मन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो इससे क्या होगा कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस बायोलॉजिकल रूल्स को फॉलो करके सुबह शाम के समय में खाली पेट में नियमित रूप से अपने अर्ध शक्ति का व्यायाम करें। लेकिन इसके लिए एक मूलभूत बात है जिसका आप ध्यान करें, जैसे कि आज आप तरह तरह के जो है सोशल मीडिया, समाचार पत्रों इत्यादि में पढ़ रहे होंगे कि हमको व्यायाम करते समय या आप करने से पहले अपने आप को कुछ जनरल रूटीन चेकअप में ले जाना चाहिए। आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपकी कार्डियक फंक्शंस है, आपकी कोई डिजीज़ है, उसका ध्यान करना चाहिए। ऐसे ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद ने भी ऐसे कुछ विज्ञान बताए जिसमें कि आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को प्राथमिक स्तर पर जान सकते हैं। एक महत्वपूर्ण लक्षण है आहार का सही ढंग से पचना। अगर आपका आहार सही ढंग से पचा है और आपकी नींद सही हुई है तभी आप व्यायाम के योग्य हैं। तो इस आहार पचन की स्थिति का आपको पता होना चाहिए कि आहार सही से पचा है कि नहीं, इसका हम कैसे ज्ञान करें। तो कहते हैं कि उद्गार शुद्धि, सही ढंग से अच्छी डकार आना, उत्साह मतलब किसी भी काम करने के लिए मन में हमेशा एक वेग होना, ये वेगो उत्सर्ग अर्थात जो हमारे नेचुरल अर्जेस हैं, मल मूत्र, जो हमारे यूरिन, स्टूल, फ्लैटस हैं, इनका सही समय पे निष्कासन हो जाना, और लघुता शरीर में हल्कापन लगना, और सही समय पे भूख प्यास अगर लग रही है तो हमारा आहार सही ढंग से पचा है। इसका एक आकलन आप हर व्यक्ति, हर स्तर पर हमारे सभी श्रोता घर बैठे कर सकते हैं। तो अगर ये स्थिति आपके साथ है तब आप अपने आप को व्यायाम के योग्य समझिए और निश्चित तौर पर दोनों काल में आप व्यायाम करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उद्गार शुद्ध नहीं आ रहा है, शरीर में उत्साह नहीं है, लघुता नहीं, हल्कापन नहीं आ रहा है, भूख प्यास सही पे सही से उत्पन्न नहीं हुई है, यूरिन, स्टूल, फ्लैटस ये सही ढंग से हमारे पास नहीं हुए हैं, तब हमको सिर्फ चंक्रमण रूपी व्यायाम, टहलने का व्यायाम करना चाहिए। तब हमें विग्रेस एक्सरसाइज, मस्कुलर एक्सरसाइज या कोई भी वेट लिफ्टिंग या कोई भी एनोरोबिक या एरोबिक एक्सरसाइज जो है भी है उससे हमें बचना चाहिए और हमें इसका पहले ध्यान करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं अपने श्रोताओं को यहाँ चलते चलते बताना चाहूँगा कि आजकल समय पे नींद नहीं लेना पाचन को बिगाड़ने का बहुत बड़ा कारण बन गया है। तो अगर हम बहुत लेट नाइट जग के मॉर्निंग में बिना नींद पूरी किए व्यायाम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है और कई बार वो हमारे को इस तरीके की जो गंभीर परेशानियां हैं वहां तक ले जाता है। वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि व्यायाम करने से कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बॉडी के चैनल्स हैं
जी,
पहला कोष्ठ, दूसरा शाखा, तीसरा मर्मास्थि संधि, अगर सामान्य भाषा में कहें तो माउथ टू एनस जिसको जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, ये हमारे बाहर की दुनिया से सीधे जुड़ा होता है और अगर डाइजेशन सही नहीं हुआ है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हैवी एक्सरसाइज से ये हमारे बॉडी के डीपर टिश्यूज में चला जाता है। और श्रोताओं ये मैं बताना चाहूँगा कि जब ये डीपर टिश्यू में चला जाता है तो जब हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो हम कार्य इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। हमारे शरीर में आयुर्वेद के विज्ञान के हिसाब से 11 इंद्रियां होती हैं, जैसे आधुनिक विज्ञान 5 सेंसरी ऑर्गन्स की बात करता है, आयुर्वेद उसको 5 ज्ञान इंद्रिय कहता है और 5 कर्म इंद्रिय कहता है और इन दोनों को जोड़ने वाली एक उभय इंद्रिय होती है जिसका नाम मन है। तो जब हम हाथ से, पैर से अपने कार्य करते हैं ये कर्म इंद्रिय है, तो इसमें जो हमारा पैर है वह हमारे हृदय नामक अंग से जुड़ी हुई इंद्रिय है। जैसा कि आप जब दौड़ते हैं, चलते हैं तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो सीधा सीधा चलने का पैर का जो जुड़ाव है वो हृदय के साथ है। तो अगर आपकी कोई भी मल, आपके अपक्व आहार पड़ा हुआ है और आप व्यायाम कर देते हैं तो आपका जो मल अभी तक जीआई ट्रैक्ट में था वो डीपर टिश्यू में चला जाता है और डीपर में पहुंच के वो हार्ट तक पहुंच सकता है। तब इस तरीके के जो हमारे अभी कार्डियक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसमें इस्कीमिया और जो इन्फार्क्शन जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, ये इसका बहुत बड़ा कारण बन जाता
जी
है
जी।
तो मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि वह अपने आहार के पचन का विचार करके, सम्यक नींद का विचार करके व्यायाम करें तो निश्चित तौर पर व्यायाम जैसा फल देने वाला कोई भी स्थिति नहीं है और आरोग्य या स्थैर्य कराणाम श्रेष्ठम मतलब एंटी एजिंग फैक्टर्स के लिए सबसे उपयुक्त है व्यायाम। और व्यायाम हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक वेगों को स्थिर करने का कार्य करता है जिससे हम एक व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक आयु के अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा और सबसे अनुरोध करूँगा कि आप व्यायाम से जुड़िए लेकिन विचार करके जुड़िए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप किसी योग चिकित्सक से सलाह लीजिए, अपने को स्वास्थ्य की स्थिति में ले जाइए और फिर व्यायाम करिए।
एक तरीके से डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी है वो इतनी सारगर्भित है और ऐसा महसूस होता है कि एक अचूक औषधि है व्यायाम, एक अमृत है जो हमें मिला हुआ है। यदि हम उसे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हमें बहुत सारी बीमारियों से तो दूर ही रखेगा, बल्कि उन बीमारियों के होने पर भी उसे जल्दी से जल्दी ठीक करके जीवन को अधिक से अधिक उम्र तक ले जाने का एक रास्ता वो बनाता चला जाएगा।
निश्चित तौर
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय आज दिया हमारे श्रोताओं के लिए।
धन्यवाद आकाशवाणी बिलासपुर, आपने हमें अवसर प्रदान किया आप सभी श्रोताओं से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।